ओम शांति, गुड मॉर्निंग. ओम शांति एवरीवन. गुड, ओके. गुड मॉर्निंग एजुकेटर्स, और आप सभी ऐसे महान हस्तियों को हम यहाँ पर आकर हम बहुत अपने आप को भाग्यवान समझते हैं. और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए. आप ऐसे टीचर्स हैं जो अपने फीचर्स से फ्यूचर को दिखाते हैं, राइट? और यहाँ पर आप एक गोल्डन फ्यूचर, होलिस्टिक फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं. तो आज आप अभी सुबह चेयर पर बैठे हैं, तो उस चेयर के चार पिलर्स हैं. अगर एक भी पिलर नहीं होगा तो आप बैठ सकते हो अच्छे से? हाँ, नहीं ना, राइट. तो इसी प्रकार से हमारे लाइफ के, हैप्पी लाइफ एंड बैलेंस लाइफ के चार पिलर्स हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल. तो ये चार पिलर्स के बारे में हम अभी समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और आज हम समझेंगे फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में और एक मजबूत पिलर ऑफ आर लाइफ. तो मैं जोरदार तालियों से निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर बीके मुकेश भाई जी स्टेज पर आए और हमें आज का जो विषय है मनी मैटर्स, फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में गाइड करें. डॉक्टर प्रोफेसर बी के मुकेश भाई जी इज द डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग सेल एंड हेड ऑफ द स्पिरिचुअल सेल एट जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर. प्रैक्टिसिंग राजयोगा ओवर 28 इयर्स, ही ट्रैवल्स अक्रॉस द कंट्री टू कंडक्ट ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स, इक्विपिंग स्पिरिचुअल टीचर्स टू डिलीवर इम्पैक्टफुल सेशंस. प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल इज एन इंस्पायरिंग फिगर इन बोथ एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट. आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी. आपका विषय है मनी मैटर्स, फाइनेंशियल वेलबींग. ओवर टू यू. इसके साथ हम आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुरेश चंद्र पाठी जी को भी इनवाइट करते हैं गेस्ट स्टेज पर कि वो अपना स्थान ले. ही इज द प्रेसिडेंट वाइस चांसलर ऑफ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर. सर का भी तहे दिल से स्वागत है. यस. He is an experienced academic leader. In his 30 years of experience, sir has built and grown top B schools in India. His leadership, honesty and dedication have been key to his success. A round of applause for our speakers, guest of honors to everyone. Over to you, Mukesh Pai.
Aaj ka topic bahut sundar topic hai. Holistic well-being ka ek part hai फाइनेंशियल वेलबींग, है ना? होलिस्टिक वेलबींग, तो टॉपिक है आज का होलिस्टिक वेलबींग का एक पार्ट जो कि फाइनेंशियल वेलबींग है. अब फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में कल हमारा डिस्कशन भी हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, करीबन 20 प्रोफेसर्स थे. पर एक बात यदि हम करें, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल वेलबींग और फाइनेंशियल एबंडेंस, चार वर्ड्स हैं, क्या कोई डिफरेंस है इनमें? दोबारा देखते हैं. पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग, एक हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक है फाइनेंशियल एबंडेंस और एक है फाइनेंशियल वेलनेस कहें या फाइनेंशियल वेलबींग कहें. तो हमारे सेशंस में जब भी हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा डिस्कशन था और उसमें तीन चार बार डिस्कशन फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट की तरफ भी चला गया. जो फाइनेंशियल वेलनेस है, फाइनेंशियल वेलनेस फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है. फाइनेंशियल अबंडेंस मतलब बहुत सारा पैसा है मेरे पास, उसको फाइनेंशियल वेलनेस नहीं कहेंगे. मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है भविष्य की, उसको भी फाइनेंशियल वेलनेस नहीं कहेंगे. मेरा फंड्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो भी फाइनेंशियल वेलनेस नहीं है. वेलनेस देखें तो वेलनेस और इलनेस दो वर्ड है. वेलनेस है और नहीं है तो इलनेस है. तो अब हमें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने को चेक करेंगे. लास्ट में दोबारा डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन की वेलनेस और इलनेस में वेलनेस का टेक्निकल मीनिंग क्या है. पर अभी हम छोटे छोटे लाइफ के एग्जाम्पल्स लेकर के ये देखते हैं कि हम इन इन टॉपिक्स पे अपने आप को चेक करेंगे कि फाइनेंशियली वेल हैं या नहीं है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के 15वें माले पर एक बिलीनियर रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। 15वीं मंजिल पे बिलीनियर्स के हस्बैंड वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, दो ही थे उस परिवार में। और उसके ठीक दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ एक कच्ची बस्ती सी थी और वहां पे एक लुहार का घर था। 15वीं मंजिल से वाइफ हमेशा उसको नीचे देखा करती थी और देखती थी तो वो क्या पाती कि लुहार का जीवन कैसा है। सुबह 9 बजे उसका जाना, शाम को 5 बजे वापस आना, दिन भर वो मेहनत करता, पर शाम को आके बड़े परिवार के साथ खुशी से बैठता है और परिवार में सुख और आनंद है। वो सोचती है कि ना अच्छा परिवार है, मुझसे तो यही ज्यादा बेटर। कहां मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करके 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 8, 9, 10 का भी पता नहीं है, तो ही इज बेटर देन मी। अब ये बात वो अपने पति को बोलती है कि देखो आपने तो करोड़ों की दौलत कमा ली, अरबों कमा ली है, और एक सामने देखो कितना खुश परिवार है। तो उसका जवाब था कि भले ये अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है, ये जो सामने वाला परिवार है ये 99 के फेर में नहीं है। बोले कैसे? बोले देखना, वो रात को 99 चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली उसके छत की तरफ फेंक देता है, लुहार के घर में फेंक देता है। लुहार सुबह उठता है, सारे इकट्ठे के बड़े खुश हुआ कि आज तो भगवान ने छप्पर फाड़ के बहुत सारा पैसा दे दिया और मेरे लिए दिया है। एक एक इकट्ठा किया, काउंट किया तो कितने निकले, 99 निकल गए। उसने सोचा भगवान ने तो ऊपर से 100 ही भेजे होंगे, एक आधे इधर उधर कहीं गिर गया, और शायद भगवान को मेरी इतनी सी कैपेबिलिटी पे तो भरोसा है ही कि इस 99 को 100 तो मैं बना ही लूंगा। तो उसने अगले दिन से अपनी वाइफ को बोला आज थोड़ा मैं जल्दी निकलूंगा, अब 99 को 100 करना है ना। तो अगले दिन वो जल्दी निकला, शाम को थोड़ा लेट भी आने लगा। अब ये उसका रूटीन सा बन गया। एक महीने बाद जबकि 99 के 100 कब के पूरे हो चुके थे उसके, बट ही डिडेंट स्टॉप ओवर देयर। और शायद ये सब कहानी केवल उस लुहार की नहीं, हम सब की है। यहां जितने भी बैठे हैं सबके 99 के 100 हो चुके हैं, सब यंस में बैठे हैं, या मनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दौड़ भी रुकी नहीं है। हमारा फाइनेंशियल वेलनेस रहे, इसमें अब है ना छोटी छोटी कुछ हैबिट्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारी लाइफ ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पे चल रही है? चेक करिएगा हमारा अपना जीवन क्या ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पर चल रहा है। यदि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पर चल रहा है तो फाइनेंशियली वेल नहीं कहा जाएगा। यानी कि खुशियां पहले खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट बाद में करना है। ये भारतीय संहिता में कभी नहीं रहा, भारत के पास्ट में, कि आप खुशियां पहले ले लीजिए, पेमेंट बाद में करना है। हम अपने भविष्य को गिरवी कर रखते हैं वर्तमान के लिए। और मैंने अपने कुछ मित्रों को तो यहां तक देखा है, 12-12, 13-13 क्रेडिट कार्ड है, 15-15 क्रेडिट कार्ड है, पेट्रोल के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, और कंपनी स्पेशल ऑफर लेकर के आ रही हैं कि कैसे आप हमारा क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। पर यह एक बहुत खूबसूरत ट्रैप है, वो आपको 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन के लिए कहेंगे फ्री यूज करो, वाह, वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू, आपको कुछ भी देना नहीं, आराम से आप इस्तेमाल कीजिए, लास्ट में आप वापस कर दीजिए 50-60 दिन बाद। क्या हम उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं? मान लो 60 दिन का पीरियड था और 60 में आपने 59वें दिन वापस कर दिया, तो क्या हम उसे कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कंपनी को? हम अपनी सोच गिरवी रख रहे हैं। आपको कम से कम 10 दिन पहले से आपका सुकून, चैन, मन बार बार ये सोचता रहेगा मुझे उसका पैसा वापस करना है, मुझे उसका पैसा वापस करना है। और ऐसे देखें कि एक से निकाल के बैंक दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे से तीसरे में डाल देते हैं, अब इसका 60 दिन शुरू हो गया, अब इसका 50 दिन शुरू हो गया, अब इसका 30 दिन शुरू हो गया, एंड दे आर हैप्पी कि वी आर यूजिंग मनी, लंबे समय से बड़े अच्छे तरीके से मनी यूज कर रहे हैं, पर वास्तव में हमने अपनी सोच को गिरवी रख दिया, हमने अपने संकल्पों को गिरवी रख दिया। और दुनिया का सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो संकल्पों की शक्ति है, संकल्पों से बड़ा कोई खजाना नहीं है, वो गिरवी रख दिया। तो कर्ज लेना, इस संस्थान के संस्थापक ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कर्ज मर्ज है, कभी कर्ज नहीं लेना, नेवर। अच्छा कर्ज दे सकते हैं, अच्छा लेते नहीं, ये ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात, कर्ज देते हैं, देंगे तो भी टेंशन में रहेंगे, मान लो चलो वो वापस कर भी देगा, पहली बात तो आजकल का जमाना ऐसा नहीं है कि कितने लोग वापस करें नहीं करें, पर मान लेते हम वापस कर भी देगा। जब भी आप किसी व्यक्ति को कर्ज देते हो वो बहुत मुसीबत में रहता है, उसका थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव, हताशा, निराशा वाला रहता है, तब वो आपके पास हाथ फैलाने आता है कि मुझे पैसा दे दीजिए, और उस पैसे का इस्तेमाल वो करने के बाद में लास्ट में बहुत दफे देखा गया है तो लौटाने की स्थिति में नहीं रहता, और लौटाता भी बड़ी मजबूरी में लौटा के देता है पैसा। उस पैसे से होने वाली इनकम यदि आपके भोजन को खरीदने में गई तो वो भोजन आपका हताशा निराशा पैदा करेगा ही करेगा, पक्का कर लीजिए। ब्याज से आई हुई रकम को हम अपने सुख सुविधा, ऐशो आराम, डेली डे टू डे लाइफ रूटीन, भोजन, इन चीजों में नहीं इस्तेमाल कर सकते, और छोड़ दें एज का मतलब। और कभी कभी एक पीछे कुछ एक बार बात आई थी कि बोले हमारे कई ऐसे अच्छे दोस्त हैं उनको पैसों की जरूरत रहती है, और क्या दोस्ती में हम पैसे भी ना दें, क्या करेंगे भी? आपके एक दोस्त को, अजीज दोस्त को 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या करेंगे बताइए, देंगे या नहीं देंगे? देंगे, और उसने वापस नहीं किया तो रिलेशन खराब होंगे। और स्पिरिचुअल आंसर क्या है, क्या हमें आध्यात्मिक दृष्टि से ये लेने देने का काम करना है या नहीं करना? आपका दोस्त मुसीबत में है और आपकी क्षमता मान लो उसको 25,000 रुपए देने की है, आप दे दीजिए 25,000 रुपए, गलत नहीं है आपके दोस्त की मदद कर, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न फ्रॉम ए सिंगल पेनी, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कीजिए कि वापस आएंगे। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी, वो बहुत मेरा अजीज मित्र था, मुझे लगा मैं दोस्ती की मदद नहीं करेंगे, अभी तो कब करेंगे की मदद, पर उसने कहा मुझे इतना चाहिए, मैंने कहा हम इतना ही दे सकते हैं जितना हम कर, क्योंकि अब ये संकल्प निश्चित है कि नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता आज भी स्वीट है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, इस एक्सपेक्टेशन से दिया ही नहीं है कि पैसा वापस लेंगे, तब तो ठीक है, तब आप दोस्ती की मदद इतना कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दोस्त से वापस लेने के एक्सपेक्टेशन में वो नहीं करना, ना कर्ज देना ना कर्ज लेना, दोनों फंडामेंटल क्लियर कर दीजिए। अब आते हैं एक छोटी सी बात, कई लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, अभी शेयर मार्केट का भी एक पार्ट होता है इंट्राडे, जानते हैं आप में से बहुत लोग जानते हैं इंट्राडे किसको कहते हैं, एक बार हाथ खड़क करके जिसको इंट्राडे के बारे में पता है, काफी लोगों को इंट्राडे मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है कि आपने सुबह शेयर खरीदा, दिन में कभी बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, आप उसको बेच देते हो, लेकिन आपको सेम डे बेचना है, शाम तक आप उसको, आपका सौदा काटना है, वो सौदा निकालना है, आपको ऐसा कुछ कहते क्या है ये? करते हैं मैं कोई यहां पर करते हैं? ये जुआ का एक नया फॉर्म है, बिल्कुल निश्चित रूप से जुआ का ही एक तरीका है शेयर मार्केट का इंट्राडे। सारे दिन ऐसे लोगों की बुद्धि ऑफिस के अंदर हमने देखा, वो हरे निशान लाल निशान में घूमती रहती है, हर दो दो मिनट में मोबाइल निकाल के देख रहे हो हरा है लाल है, हर दो दो पांच पांच दस दस मिनट के अंदर उनका ऑफिस के वर्क में मन ही नहीं लगता है। हम लोग ये पक्का करें, हम अपनी बुद्धि गिरवी नहीं रखेंगे, कमाली होंगे कमाली होंगे। वैसे तो ऐसे लोग कमाते नहीं है, मैं आपको बता दूं अच्छे से, लॉन्ग रन के अंदर कोई किसी से कहीं बोलते भी हैं आपको मिलते हुए ऐसे दिख जाएंगे, हाँ मैंने इतने कमा लिए इतने कमा लिए। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो 10 साल से ये काम कर रहा हो और उससे पूछना कि आपने कितने कमाए, और नहीं मैंने कमाए तो बहुत थे पर वो एक दिन ऐसा गड़बड़ हो गया सब निकल गया, ऑन एन एवरेज जीरो ही रह गए। ये जुआ है जुआ है जुआ है, साफ साफ जुआ है। अब दूसरी बात पे आते हैं, कई लोग बोलते हैं क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं, जरूर करें, एक आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है तो भाई 2-4 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट का थॉट है आपका, कम से कम एटलीस्ट वो पैसा किसी कंपनी के विकास में, डेवलपमेंट में, देश के उसमें कहीं ना कहीं काम आ रहा है, अच्छी बात है। पर उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो वो भी मत कीजिए। नहीं पता है एबीसीडी तो नहीं कीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, मान लो एक टोबैको कंपनी है, मान लीजिए तंबाकू का उत्पादन करती है, बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। पिछले 10 साल से एनुअली 25% रिटर्न दे रही है। अरे वाह क्या बात है, मैं यदि लाइफ में कभी कमाने के लिए बैठूं तो 25% रिटर्न तो निकलता ही नहीं है। 10 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न, 3 गुना शेयर हो गया, 4 गुना शेयर हो गया, 5 गुना शेयर हो गया, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। याद रखिए शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप, भले आप 1% आधा परसेंट के ही पार्टनर होंगे, आप उस तंबाकू के बिजनेस के पार्टनर हो गए। यदि आप कहलाना पसंद करेंगे कि आप तंबाकू के बिजनेस के पार्टनर हैं तो जरूर कीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, अदरवाइज रिफ्रेन, कंट्रोल योरसेल्फ और केवल वहां ही इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको पता है कि एक एथिकल स्टैंडर्ड पे बिजनेस हो रहा है। और यदि एथिकल स्टैंडर्ड पे बिजनेस आपको आपके स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं लगता तो आप छोड़ दीजिए। बहुत सारी ऐसी जगह, मान लीजिए ऐसी ऐसी कंपनीज है मांस का प्रोडक्शन करती हैं, अब हमें पता नहीं है, एबीसीडी किसी ने कह दिया कि भी लगा दो इस शेयर में, हमने भी लगा दिया, क्या हो गए, हम भी उस मांस के प्रोडक्शन में बराबर के हिस्सेदार हो गए और बेचने में बराबर के हिस्सेदार हो गए। तो कंपनीज में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते लगाते बहुत बहुत सावधानी के साथ लगाइए। हमारी जो अर्निंग आए ना, वो अर्निंग बहुत खूबसूरत तरीकों से आनी चाहिए। यदि वो सही तरीके से, एथिकली राइट स्टैंडर्ड से नहीं आई तो वो जीवन में सुख पैदा नहीं करेगी, एबंडेंस पैदा कर देगी, वो साधनों को पैदा कर देगी, साधना को आने नहीं देगी। बिजनेस में एथिक्स, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में एथिक्स नहीं होते। आज बहुत सारी कंपनियों ने अपना नाम रोशन किया है एथिक्स के दम पे ही किया है। इंडिविजुअली मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत सारी कंपनीज का नाम ऑलरेडी जानते हैं। एथिक्स के दम पर ही बिजनेस होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज निकाल के देख लीजिए, उसमें से 400 बिजनेस में एथिक्स के दम पे चल रही होंगी, कम से कम 400 से ज्यादा। छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, जो एक बार चढ़ गए और दूसरे दिन गिर गए, वो आपको एथिक्स और नॉन एथिक्स परिभाषा वहां लगती है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, सृष्टि रंगमंच पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। आज से हजारों सालों पहले के इतिहास में चले जाएं तो सबसे पहले ये धरती देवीय दुनिया थी, ये संसार देवताओं जैसी दुनिया थी। क्या बिजनेस था भाई उस समय, हम गोल्डन एज की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, देवताएं इस धरा पर रहते थे, कैसे सृष्टि चलती होगी। सतयुग की बात करते हैं, कुछ लाख लोग इस धरती पर रहते हैं। सोचिए आपके पास एक रिमोट बटन है, अभी इसी समय रिमोट का बटन दबाया और दबाते ही आप लेके दुनिया में पहुंच गए। इस संसार में लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं, राधे और कृष्ण का राज इस धरती पर है, बहुत थोड़े से लोग चारों तरफ रहते हैं। प्रकृति अपनी संपूर्णता पे है, वैभवता पे है, किसी कोई चीज की कमी नहीं है। क्या बिजनेस होता होगा उस समय वहां पे, क्या बिजनेस होता होगा उस समय। आप जैसे यहां पर रह रहे हैं ना, अपन या कभी शांतिवन में जाएंगे, लोगों के हर व्यक्ति एक दूसरे का काम कर रहा है, कोई करेंसी की जरूरत नहीं है, बिजनेस की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अब मेरा काम फर्नीचर बनाने का है, तो पूरे समाज के लिए मैंने फर्नीचर बनाया, अपने आसपास जिनके लिए मेरी जिम्मेदारी है बनाया, मेरे घर पे अनाज डालने वाला अपने आप डाल के जाएगा, देयर इज नो बिजनेस इन दैट। बिजनेस नहीं था, मेल जोल के तरीके से समाज व्यवस्था चलती थी सतयुग और त्रेता तक, दो युगों तक। द्वापर युग में जब आता है तो फिर बार्टर समाया, फिर बार्टर सिस्टम में क्या था, लेना और देना। पहले बार्टर भी नहीं था कि आप फर्नीचर आपके घर का तब बनाऊंगा जब अनाज डाल के जाओगे, ये सतयुग में ऐसा नहीं था, वो भी नहीं था। मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे ये स्किल आती है, तो मेरी ये स्किल समाज के लिए उपयोगी हो, ये काम था। गोल्डन एज सिल्वर एज की बात करते हैं, और यही जब द्वापर युग में आ गया तब ठीक है, लोगों का ऐसे नहीं कि सारी समाज के लिए ही हम कर रहे, नहीं, हमने उनके लिए किया, उन्होंने हमारे लिए किया, तब भी बार्टर सिस्टम था। आज कैन यू बिलीव कलयुग का आखिरी समय चल रहा है, इसमें भी आप 25-30 साल पहले, 50 साल पहले चले जाओ, तो 50 साल पहले तक उस गोल्ड बेचने वाले लोग जो है ना, बर्तन बेचने वाले, गोल्ड बेचने वाले लोग घरों के आसपास घूमते थे, वो कुछ लेते थे और आपको दे जाते थे इन रिटर्न, इस समय तक भी मौजूद था। फिर बाद में धीरे धीरे करेंसी का चेंज हुआ, व्यापार सिस्टम बदला, व्यापार के अपने अपने नियम और ये सारी चीजें, एथिक्स है, बिना एथिक्स के बिजनेस चल नहीं सकता। एक जुगनू की तरह हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए टिमटिमा ले, लेकिन उस जुगनू का धराशायी होना निश्चित है। कुछ और एक छोटी छोटी बातें, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं पर इमोशंस का ख्याल, रिश्तों का ख्याल पैसों में रखना बहुत जरूरी है। विशेष विशेष रूप से अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर जनरली ये मान्यता रहती है कि बहन है, बेटी है, वो पराए घर चली जाती है, पर वो कभी पिता की संपत्ति में दावा नहीं करती है। नहीं देखा ऐसा, बहुत किसी परिवार में कोई होता होगा, बट जनरली देखा गया है कि बहन और बेटी पराए घर जाती है, वहां जाकर के वो पर दावा नहीं कर रही। क्यों भाई? यहां सारे भाई लोग बैठे हैं, मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, इस बात को जीवन भर नहीं भूलना। वो इसलिए दावा नहीं करती है कि जब जब वो बहन उसके घर आएगी उसको तब तब ये फील होगा ये उसका अपना घर है। शादी के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भाई का कर्तव्य है जब जब आएगी बहन को अच्छे से फील होना चाहिए कि आज भी उसी का घर है। भरपूर करके भेजना, कभी कमी नहीं आती है, कभी नहीं आती है कमी। बहन, बेटी, बुआ, घर में यदि पेरेंट्स हैं, मां बाप हैं, कभी उनको कहना ना पड़ जाए कि मेरे को इतने पैसों की जरूरत है, जरा देना। आपके कहने से पहले उनको पैसा देना, ये फाइनेंशियल वेलनेस है। इवन मां बाप को छोड़ो, अपनी पत्नी को भी, अपने युगल को भी, मान लीजिए पत्नी को भी पैसा दे रहे, पत्नी को कहना ना पड़े कि भाई ये लाना है, ये लाना है। जनरली कभी कभी, जनरली ऐसा थॉट होगा नहीं भाइयों का भी, लेकिन कभी कभी भाई लोग पूछ भी बैठते हैं, क्या करोगी इतने पैसों का, कल तो दिए थे, वो 5,000 रुपए का क्या हुआ। जनरली ऐसा हो जाता है कभी कभी, पर इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहनों की भी आ जाती है। पहले भाइयों की बात की थी कि भाइयों को बिना पूछे देना है, और मांग लिया, बाई देवे मांग लिया, तो कारण तो पहले तो नहीं पूछना है, पहले आप दे दीजिए, बाद में आपको कारण पूछना है तो भले बाद में पूछिए, देना पहले है। अच्छा भाई, ऐसे केसेस में बहने ध्यान दे, भाइयों को बिना बताए दे दें। अब बात यह है कि कमा के लाया गया एक एक खर्च वेलनेस में यूज हो रहा है, इलनेस में नहीं हो रहा। इलनेस मतलब मेरे ड्रॉअर में 300 साड़ियां रखी हुई हैं और उसके बाद में मैं साड़ी की परचेजेस करने चला गया, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल इलनेस है, वेलनेस नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमारे ऑफिस में देखे हैं हमने, 365 दिन तक चेंज ही नहीं करते, 365 दिन तक दोबारा नंबर ही नहीं आता उसका, एवरी डे इट इज डिफरेंट। दो चार साल बाद शायद कभी नंबर आता हूं। यदि ऐसा है तो ये इलनेस पक्का है। एक एक पैसे को जिम्मेवारी पूर्वक खर्च करना। अच्छा चलिए मान लो एक बात है, हमने यहां से शरीर छोड़ा फिर चले गए कहीं ऊपर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं यहां से आत्मा गई परमधाम चली गई, क्या साथ लेके जाएंगे? कुछ नहीं। अब अच्छा एक ने जवाब दिया अच्छे कर्म साथ लेके जाएंगे। अब अच्छे कर्म कहां से लाएं? जो मनी है उससे कुछ खरीद सकते हैं? मनी नहीं जाएगा, बट मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड कर्मास, और वो गुड कर्मास की पूंजी साथ लेकर के जा सकते हैं। तो वो मनी खर्च करनी है, उससे कुछ ब्लेसिंग्स लेनी है, दैट ब्लेसिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू गुड कर्मा, वो ब्लेसिंग साथ में जा सकती है। देखो कितना अच्छा तरीका है। मनी नहीं ले जा सकते, करेंसी नहीं जाएगी, ना डॉलर जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना कुछ जाएगा, पर ब्लेसिंग साथ में। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, पर ये लोगों की कैलकुलेशन है, अपनी कैलकुलेशन अलग है। भले आए खाली हाथ थे, पर भरतू हाथ, भरे हुए हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कर्मों की शानदार पूंजी साथ लेकर के जाएंगे। एक और छोटी सी बात में आगे बढ़ेंगे, लीगल केसेस। बहुत बार ऐसा देखा गया है फाइनेंशियल्स को लेकर के, पैसों को लेकर के कोर्ट केसेस हो जाते हैं, परिवारों में हो जाते हैं, और ज्यादातर कोर्ट केसेस निकट संबंधियों में होते हैं। सेकंड नंबर के कोर्ट केसेस अड़ोसी पड़ोसी से होते हैं, और थर्ड नंबर के केसेस, चौथे नंबर के केसेस दूसरे फिर नॉन फाइनेंशियल केसेस होते हैं। पर ज्यादातर केसेस आप फाउंड आउट करोगे, आज के भारत के 10 करोड़ केसेस जो पेंडिंग हैं उनका एनालिसिस करोगे तो उन 10 करोड़ में से ज्यादातर केसेस परिवारों के हैं, पैसों को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के। और केस लड़ने वालों की औसत उम्र मानोगे तो 40-50 साल के आसपास उन लोगों की औसत एवरेज होती है, अंदाजन 40-50 के आसपास लोग, ज्यादातर ऑन ऑन एवरेज, कोई 60-70 का भी होगा तो हो सकता है कोई 30 का भी होगा, पर ऑन ऑन एवरेज 40-50 साल की उम्र में। भारत की औसत आयु 60-70 साल होगी, 50 साल की उम्र में 70 साल की औसत आयु रहती है, जिसकी भी गारंटी नहीं है। 20 साल शायद जिंदगी में अभी और जीना बाकी रहेगा, 20 साल। और भारत में केसेस की औसत आयु करीब करीब 15 साल है। इस तरह के केसेस में 15 साल पहले रिजल्ट ही नहीं निकलते। 40 साल 50 साल की उम्र में केस किया, 65 साल की उम्र में रिजल्ट आया, 5 साल बाद मरने का टाइम हो गया। व्हाट वी आर डूइंग, इस तरह के केसेस को एमिकेबल फ्रेंडशिप के द्वारा थोड़ा सा नाक नीची करके, थोड़ा सा ईगो को खत्म करके खत्म कर दें। मुझे मरने से पहले अपने साथ कोई कोर्ट केस लेकर के नहीं जाना है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमारा भी एक कोर्ट केस था और लास्ट में कितना सुंदर तरीके से, और उस कोर्ट केस के बाद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, और फाइनली कोर्ट केस जब यहां ब्रह्मा कुमारीज में माए ज्वाइन किए, सीखा, और तो यार क्या करेंगे कोर्ट केस ले जाकर के, ऐसे सामने वाले को बुलाया, भैया ये पकड़ो कागजात, खत्म, नमस्ते, भले हमारा बनता था आपका बनता था छोड़ो, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, नथिंग डूइंग, वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग। कम से कम दोस्ती बनी रहे, कम से कम प्यार बना रहे, कम से कम रिश्ते बने रहे, ऐसे छोटे मोटे। और बहुत लोग होंगे आज इस सभा के अंदर इस चीज को, हमारे यहां पे जगदीश भाई बहुत सीनियर भाई रहे हैं यज्ञ के, सन 2001 में शायद उन्होंने शरीर छोड़ा, 11 मई 2001, महान आत्मा। दिल्ली के अंदर कहीं एक स्थान पर सेंटर चल रहा था, 25-30 सालों से सेंटर था, तो मकान मालिक ने कहा भाई खाली कर दो, पगड़ी भी दे रखी थी, सब कुछ था। पगड़ी जानते हैं आप में से कई लोग जानते होंगे, वो कैसे क्या बोलते हैं उसको, एडवांस मनी होता है अच्छा खासा। तो भी उस भाई ने कहा कि नहीं आप इसको इमीजिएटली खाली करो, और वैसे तो नियम होता है कि सारा कुछ देना वाला, उन्होंने तुरंत उनके कहे अनुसार घर भी खाली किया। लोगों ने उनको कहा कि भाई ये खाली करा नहीं सकता लीगली आपसे, सारे कानूनन आपके हैं, इतने साल रह चुके, पगड़ी दे रखी है, या तो पगड़ी वापस करे, ये करे वो करे, नथिंग डूइंग। उन्होंने न केवल खाली किया और बाकायदा खाली करने से पहले पूरे को अच्छे से पेंट शेंट रंग रोगन करा के बिल्कुल न्यू कंडीशन में ले जाकर के वापस दे दिया। उसको बोले आप मालिक हो, आप रखिए। थोड़ा सा दिल बड़ा करते ही ना समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, और थोड़ा सा दिल छोटे होते ही समस्याएं बड़ी लगने लगती है। रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आप पक्का मानिए कि आप दो कोर्ट केस कम करके देखिए, एक कोर्ट केस उसका परिवारों पे असर आएगा। परिवार अच्छे से चलने लगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, उनके संस्कार अच्छे होंगे, आपको रिटर्न निश्चित रूप से मिल गया। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे कोर्ट केस खत्म करना है, आपका सुख शांति सुकून तुरंत वापस है और आपके परिवारों के संस्कार अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। तो आज ये एक चीज तो जरूर यहां से पक्की करके जाना कि यदि कोई कोर्ट केस हो तो ले दे के एमिकेबली कुछ कम मिल जाए तो भी, 50% मिलना था नहीं 40 मिल रहा है, उसकी जगह 30-20 भी मिल रहा है, ले दे के खत्म करो मामला। बहुत ज्यादा जीना नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, और न जाने किस मोड़ पे फिर दोबारा और किन राहों में किन बातों में किस कारणों से मिलना पड़ जाए। अच्छा चलो, ये तो मैंने दो चार एक्सपीरियंस से बातें ले ली। अब जल्दी जल्दी जो हमने जी पावर पॉइंट स्लाइड है उसके थ्रू भी टाइम। अच्छा चलो, 5 मिनट में कोई पॉइंट और छोटे से बचे हो तो वो और देख लेते हैं। एक छोटा सा बात और लेते हैं, आप में से बहुत लोग एमएलएम के बारे में जानते हैं? जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना। एक आता इंसान, वो 2 मेंबर बनाता है, फिर उसके आगे 2 या 3 मेंबर, फिर दूसरा 3 मेंबर बनाता है, फिर तीसरा 3 मेंबर बनाता है, ऐसे चेंज चलती जाती है। सुना है आपने, है ना। तो कृपया करके हमारी रिक्वेस्ट है इन चीजों से बचे हैं। दुनिया के बहुत से देशों में मल्टी लेवल मार्केटिंग को बैन कर दिया गया है। क्यों गलत है ये? क्या ये चेंज जिंदगी भर चलती रहेगी या 10-20 साल में रुक जाएगी? पहले ही रुक जाती है। यदि ये चेन में 30 लेवल तक भी नीचे चली गई, 30 लेवल तक नीचे चली गई, तो इसका मतलब होता है 2 to the power 30, यानी 100 करोड़, यानी कि भारत का हर पैदा बच्चा हुआ होता होगा यदि 30 लेवल तक चेन चली जाए तो, भारत का हर पैदा होता हुआ बच्चा भी उसका मेंबर होगा। चलो मान लेते हैं चली जाए, आखिर के 2 लेवल आप उसके काउंट करके देखेंगे तो 100 करोड़ में से 80-85 करोड़, 82 करोड़ लोग आखिर के 2 लेवल में होंगे, और ऊपर के 28 लेवल में बाकी के 15-17 करोड़ लोग होंगे। काउंटिंग करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखिएगा। ये 2 to the power 28 को एक तरफ रखिएगा, 2 to the power 29 और 2 to the power 30 को एक साथ जोड़ लीजिएगा। इसका क्या मतलब हुआ? नीचे के 2 लेवल का पैसा ऊपर के सारे 28 में बट रहा है, और जिस दिन ये बिजनेस बंद होगा उस दिन ऊपर के 16-17, ऊपर के 27-28 लेवल के लोग फायदे में रहेंगे और नीचे के 2 लेवल के लोग सदा नुकसान के साथ ही बंद होगा। यानी 80% लोग सदा नुकसान में रहेंगे, 20% लोग ही फायदे में हो सकते हैं मैक्सिमम। नीट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल परफेक्टली राइट किया। मतलब राजस्थान के 4-5 मियां नाम ले नहीं सकते, लेकिन 5-7 एग्जाम्पल राजस्थान के हम जानते हैं, कुछ जेल में बैठे हैं आज भी। 80% बिजनेस वो होता है जो विन विन होता है। आपने ना एक गली की नुक्कड़ में एक परचूनी की दुकान खोल रखी है ना, वो भी बिजनेस है, क्योंकि उससे आपका परिवार चल रहा है और सामने वाले की भी जरूरतें पूरी हो रही हैं, दोनों विन विन है। एक जीते दूसरा हारे, ये विन विन नहीं होता है, जुआ होता है। तो कृपया कृपया करके हम ये एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग से बचे। अच्छा बहुत जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। 5 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, पैसा कमाना, खर्च करना, गिफ्ट में लेना देना और बचाना। इन 5 चीजों के लिए आ गए तो फाइनेंशियल वेलबींग है। गिफ्ट लेने देने में भी एथिक्स, देखे दिखावे के चक्कर में 5 रुपए की जगह 50,000 का गिफ्ट दे रहे हैं सिर्फ दिखावे दिखावे की वजह से। आपका दिल से प्यार है आप 1,00,000 का दीजिए ना, गिफ्ट मना नहीं है, आपकी हिम्मत है और दिल का प्यार है तो दीजिए, लेकिन हिम्मत और दिल के प्यार के नहीं, पड़ोसी ने इतना दिया है तो मुझे इतना देना है, फलाने की शादी में 1100 आए थे तो मुझे 2100 तो करके देना ही है, उसने 2100 दिए थे तो 5100 का तो लिफाफा बनता ही है। और आजकल पता नहीं है और जगह होता नहीं होता, राजस्थान में तो एक दिखावा प्रथा और है। अभी दिखावा प्रथा जानते हैं उसमें क्या होता है, जो आपको दिया जाएगा बेटी की शादी में उसको पहले लेके सारा ऐसे रख दिया जाता है और अड़ोस पड़ोस को सबको बुलाया जाता है कि आओ आके देख लो हम क्या क्या दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है। सेविंग्स हो, अच्छे से हो, जरूर हो, पर अपने वर्तमान और के कॉस्ट पे नहीं हो, कंजूसी से नहीं हो। देवताओं का हाथ अभी ऐसे ही अच्छा लगता है लक्ष्मी का। और ये जो धन है ना, इसके हम केयर टेकर हैं, ओनर नहीं है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, सिर्फ केयर टेकर है, मालिक नहीं है। ये पक्के पक्के से कर लीजिए बात, केवल 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 केयर टेकर है। अच्छा, आज के 200 साल पहले जो ये जिस जमीन पे हम रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, किसके पास था? आज के 200 साल बाद किसके पास होगा? मतलब हमें यूज करने के लिए मिला हुआ, कल किसी और के पास था, कल किसी और का होगा। नेक्स्ट इज, मनी इज अ पावरफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हेन मनी सर्व्स यू एंड योर सोल रिमेन्स फ्री फ्रॉम इट्स ग्रिप। आत्मा गुलाम न बन जाए उस धन की, ये हम बात कर चुके हैं। अर्न कैसे करना है इस पर भी बात की, अपने हेल्थ के कॉस्ट पे मनी नहीं कमानी है। मान लो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, अच्छा खासा कमाई है मेरी, तो बचे हुए 3-4 घंटे मन नहीं लगता ये बात ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें, इसके चक्कर में शाम को जाके 2 ट्यूशन ही पढ़ा लूं, शाम को जाके यही कर लूं, सुबह जाकर के यही कर लूं। प्लीज प्लीज बचिए इन चीजों से। हो गया है, आपका एक पाया बहुत मजबूत हो गया, फाइनेंशियल वेलबींग वाला पाया ठीक है, बाकी और वेलनेस को भी आप समय दीजिए, सोशल वेलनेस है, दूसरे जो वेलनेस है उनका भी आप पूरा सा समय दीजिए। गेट, ये बात हम कर चुके। वांट्स और नीड, इस पे भी हम बात कर चुके। हम तन और धन का इंश्योरेंस अक्सर सब लोग कर लेते हैं, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस भी ले लेते हैं और प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, पर अपने संकल्पों का इंश्योरेंस करने का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपने संकल्पों का इंश्योरेंस कर पाते हैं, इस पे भी ध्यान देना। मेडिटेशन साथ चलता रहे तो थॉट्स का, फिर तन मन धन तीनों चीजें अच्छे से चलेंगी। इंपल्सिव स्पेंडिंग, आज मूड खराब है, देखा गया जिस दिन मूड खराब होता है तो पहला याद, सबसे पहले क्या याद आता है? शॉपिंग कर लेते हैं, और शॉपिंग में इंपल्सिव स्पेंडिंग हो जाती है, अननेसेसरी का खर्च कर रहे हैं। केयर टेकर वर्सेज ओनर, ये इंट्राडे पे हमने बात की है। परचेजिंग प्रॉपर्टी, हर व्यक्ति धरती पे आया है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास एक मकान दो मकान हो, आपको एक बच्चों के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, एक आध आपको जमीन चाहिए, जरूर रखें, पर 40-40, 50-50 प्लॉट खरीद के रखे हुए और वो भी इतने गौरव के साथ दूसरों को बता रहे हैं। माई गुडनेस, वॉट वी आर डूइंग, काम आने सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, साफ साफ याद रखें। तो जरूरतें सारी पूरी हैं, हो सकती हैं। अभी हमने चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन दिया कि फाइनेंशियल वेलबींग क्या होती है, तब उसने कहा, चैट जीपीटी को कितनी नॉलेज है, मैं उसकी नॉलेज पे हैरान रह गया। चैट जीपीटी ने पता है क्या कहा? आपके पास 3 अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ, गॉड और यूनिवर्स, इन तीनों में आपका पक्का फेथ होना चाहिए, इसी को फाइनेंशियल वेलनेस कहते हैं। आपको खुद में यकीन है मैं कमा सकता हूं, आपको भगवान पे यकीन है एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, आपको इस सृष्टि चक्र और ब्रह्मांड पे यकीन है कि मेरे लायक जो कुछ होगा इस ब्रह्मांड में निश्चित है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एंड वंडरफुली, ब्रह्मा कुमारीज के पहले 3 चैप्टर भी यही है, सेल्फ, गॉड और सृष्टि रंगमंच, आपने ये देखी है तो 3 ही चैप्टर, यही 3 चैप्टर, कमाल की बात। मतलब चैट जीपीटी को ये पता है कि आपको ये 3 अवेयरनेस रहनी चाहिए। अच्छा, चलिए लास्ट में ग्रेटिट्यूड। ए थैंकफुल हार्ट अट्रैक्ट्स अबंडेंस, थैंकफुल हार्ट अट्रैक्ट्स अबंडेंस। जिसके दिल में थैंक्स है ना, बहुत कुछ दिया है, थैंक्स है ना, तो उससे क्या होता है, धन आपके पीछे पीछे भागता है। और कंप्लेनिंग नेचर है ना, और कंप्लेनिंग नेचर है तो धन दूर भागता है, रिपेल करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
ओम शांति। हम आदरणीय मुकेश भाई का जोरदार तालियों से थैंक यू करते हैं कि हमें उन्होंने फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में समझाया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की। तो जब बचपन से हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्रकृति का इन्वेस्टमेंट, पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट, टीचर्स का इन्वेस्टमेंट, और आप सभी टीचर्स हैं जो अपनी एनर्जी है ना, अपना समय फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने ऊपर भी हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना है, अपने थॉट्स के ऊपर, क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर। तो अभी हम निवेदन करते हैं कि डॉक्टर सुरेश चंद्र पाधे सर को कि वो अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स के ऊपर गाइडेंस करें। वेलकम सर।
ओम शांति। ये फाइनेंशियल हैबिट के बारे में बताना मैं कितना काबिल है ये मुझे रियली नहीं मालूम है, क्योंकि फाइनेंस इज ए सब्जेक्ट जो हर किसी को मालूम है अपने तरीके से। हर किसी व्यक्ति ने जानता है कि फाइनेंस होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो कहाँ कहाँ जरूरत होता है। मैं भी ऐसे मुझे 57 ईयर हो गया, तो मैं भी कुछ जानता हूँ जो सबको मालूम है, बट ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता है मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं जानता है। ये फाइनेंशियल हैबिट या फाइनेंशियल सेविंग या ये जो फाइनेंस की जो आज इतना चर्चा की बात हो रहा है, मैं क्यों जरूरत पड़ गया, ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं एक दो चीज बोल सकता है या कितना सही है ये भी नहीं जानता है। 50 साल पहले या 45 इयर्स पहले जब हम लोग गांव में थे, बड़ा छोटा सा गांव है, हमारे घर में ऐसे कोई सर्विस नहीं करता था, मतलब पिताजी ऐसे ऐसे छोटा सा कभी मंदिर में पूजा करते थे, एंड हम कभी नहीं जानते, मतलब कभी देखा नहीं है पहला बचपन 20-25 साल कि हमारे घर में कोई मंथली सैलरी आता था, बट हम 5 भाई बहन थे, ऐसे कभी फील नहीं किया कि पैसा हर एक महीना जरूरत है, क्योंकि उस टाइम की कंडीशन ऐसे था कि अगर आपको घर में एक साल में एक बार अनाज आ जाता था, बाकी सब छोटे मोटे काम मैनेज हो जाता था। बट आज आप सब मालूम है, एक तारीख से 10 तारीख अंदर आप पैसा अगर नहीं आएगा, सबके घर में महाभारत हो जाएगा। ये बात कितना लोग राजी है, थोड़ा हाथ खड़ा करें तो मैं सही है एक। दूसरी, तो मैं 20 साल की बात कर रहा हूं जहां पैसा की जरूरत नहीं था, क्योंकि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो बिजली की बिल नहीं था, घर में पानी कुआं में लाते थे तो पानी की बिल नहीं था, और मोबाइल था नहीं तो मोबाइल बिल की जरूरत नहीं था, और घर में गाड़ी की जरूरत नहीं था, जो पब्लिक बस आता था वो थोड़ा सा पैसा में कभी जरूरत है, एंड गांव में थे तो ओनली हम लोग ही स्कूल जाते थे, या स्कूल में तो गांव के स्कूल में पढ़ते थे, जब कॉलेज जाते टाइम जरूरत पड़ा। तो ये एंड वो रिक्वायरमेंट भी कम था ना, जैसे कोई खेती से साग आ गया तो वो चल जाता था, बट आज वो सिचुएशन अलग हो गया, इसलिए फाइनेंस की जरूरत पड़ गया ना। दूसरी चीज क्या हुआ, मैं इवन जब 80 से 90 की बात कर रहा हूं, अगर किसी के पास कुछ पैसा है तो अगर एफडी भी करता था तब 12% इंटरेस्ट मिलता था, 80 से 90, तो 12% इंटरेस्ट आपकी इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर लेता था। इन्फ्लेशन भी 7-8% था, 9%, तो आपको लगता था कि मैं अगर 1000 रुपया रख दिया, इवन मैं देखा है गांव में जिसके पास 20-25 हजार होता था वो महीना में इंटरेस्ट ला के गुजारा करता था एंड वो चल जाता था। 25 हजार रुपया लोग एफडी करने से लोग उनके घर में शादी करवा देते थे, अच्छा उसके पास 25 हजार एफडी है बोल के। बट टुडे आप जब नौकरी करते, जितना सारे लोग हैं उनको मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन ईयर 8% होता है एंड इन्फ्लेशन बोलते हैं 9%, बट इफ यू रियली इंक्लूड जीएसटी इट इज मोर देन 15% एवरी ईयर। तो आप आज 100 रुपया है, 80 रुपया खर्चा कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका 110 रुपया इनकम है बट आपकी खर्चा 120 रुपया हो जाता है। इसकी वजह से फाइनेंस की जरूरत ज्यादा और फाइनेंस के बारे में जानना ज्यादा जरूरी हो गया। तो ये दोनों चीज मेरा जो एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलता हूं, ये बिकॉज ऑफ दिस एंड 100 रुपया आज रखो उसकी जो वैल्यू डाउन होते जाता है आज के टाइम पे, आपको लगता है कि अच्छा मैं जैसे मैं इंडियन आर्मी में 7 साल सर्विस किया है तो उस टाइम मैं स्टार्ट किया था करीब सैलरी 4500 रुपीज था मेरा सैलरी, तो आज मेरा पेंशन ही 35-40 थाउजेंड कुछ होगा। तो अगर मैं 4000 उधर रख दूं जस्ट एफडी में, जो सैलरी था आज 4000 में आपकी बच्चे की पॉकेट मनी से भी कम पड़ता है। सो ये हालत है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आज फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल हैबिट की सख्त जरूरत पड़ गया, क्योंकि आप जानते हो आप जिस दिन काम नहीं कर पाओगे उस दिन आपको देने वाला कोई नहीं है। पहले तो देने वाले थे, गांव में चल जाता था, वो नहीं है। दूसरा, वैल्यू इतना कम होते गया वो वैल्यू को पूरा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये फाइनेंशियल हैबिट की बहुत जरूरी है। तो मैं फाइनेंस की विजार्ड नहीं है, अगर होता है तो अभी तक नौकरी नहीं करता, मैं भी कहीं आराम से बैठता। बट जो फाइनेंस बुक में लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स है विच आई कैन टेल यू, और तो सर ने पूरी कवर कर दिया है। एक तो है, बोलते हैं लिव विद इन योर मीन्स, मतलब आप जितना कमाते हो कभी भी आपके जो खर्चा है उससे किसी भी बारे में किसी भी टाइम में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिव विद इन योर मीन्स। आजकल जो बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड, यू नो टेक द प्रोडक्ट नाउ क्राई लेटर, हम वो क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं बाय नाउ एंड क्राई लेटर। सो दिस आर द स्कीम्स। कुछ स्कीम्स है आप ये 15 दिन में खरीदो तो आपको आधा पैसा में मिलेगा। तो जब जरूरत भी नहीं है हम खरीदते हैं, एंड पर्टिकुलरली इस एरिया में मास्टर बहने ज्यादा होते हैं, मैं मेरा घर में भी देखा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि शॉपिंग मॉल जैसे कि उनकी नेक्स्ट होम है। मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, ये घर घर की बात है, एंड ये मैं आप लोग को भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सभी से बड़े हैं। मैं तो जो जिंदगी में रोज जिंदगी में जीता है उसकी बात करता हूँ। एंड ये जब होते होते ये सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि आपको एक फैंसी कार अच्छा लगता है या एक मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल अच्छा लगता है, एंड वो इतना आसानी से मिलता है कि इतना टेम्पटेशन होता है, लगता है कि आज ही जैसे कि पूरी खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद देते टाइम लगता है कि हमने एक मिस्टेक कर लिया, बट वो एक्साइटमेंट में हम लोग भूल जाते हैं कि वो मिस्टेक क्या हुआ था। आपको मालूम है मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, विजय माल्या, जो एक जमाने में नाम उसको लिया जाता था कि अरे उसके पास फ्लासी कार है, याट है, एंड इतना यू नो एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी है, एंड उसका जो पोस्टर भी बड़ा फेमस होता था, कैलेंडर, न्यू ईयर कैलेंडर। एंड ये जब उसकी पार्टी इतना सो हाई था बट उसकी जो फाइनेंशियल जो लिमिट है उसका कोई कंट्रोल नहीं था, इसकी वजह से इतना सारे करोड़ रुपया बैंक से लोन लेके आज वो दूसरी कंट्री में फ्यूजिटिव बनकर के घूम रहा है। सो वो एक रीजन है, आप लोग सबको ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक जो जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए, द रूल कॉल्ड 50-30-20, मतलब जो भी सैलरी कमाते हैं, जो भी धन कमाते हैं, जैसे भी पैसा आता है, उसकी 50% मनी शुड गो टू योर एसेंशियल रिक्वायरमेंट, चाहे फूड है, चाहे क्लोथ्स है, चाहे आपकी ट्यूशन फीस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल बिल है, जो भी बिल है, ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज योर एसेंशियल रिक्वायरमेंट। और जो 30% रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 30% जो है आपका वांट है, कभी आपको जैसे उदयपुर जाना है, कभी कोई होटल में खाना खाना है, क्योंकि सबको लोग लगता है कि होटल में खाना खाने से इंस्टाग्राम में एक स्टोरी मिल जाएगा, है ना। सो या मूवी जाना है, या कभी मन होता है कि चलो आज जिम में ज्वाइन कर लिया, आल दो जनवरी में ज्वाइन करके 90% लोग फरवरी में छोड़ देते हैं, है ना। मैं किसी को एक बोला, यू नो फर्स्ट जनवरी को जिम इतना भीड़ होता है, सेकेंड जनवरी में उसके थोड़ा कम हो जाए, एंड 7 जनवरी को देखो उसमें एक आदमी होता है और गांधी की पुतला होता है, उसके बाद कोई नहीं जाता है। सो ये वो भी हैबिट करना चाहिए, बट दैट शुड बी विद इन 30%, एंड 20% शुड बी ओनली फॉर सेविंग। बट डोंट थिंक दैट 20% जो सेव कर रहे हैं वो जो रिपब्लिक डे सेल के लिए वो काम आएगा, ये 20% शुड बी सेविंग फॉर योर फ्यूचर। दिस हैज टू हैपन, अदरवाइज आप हमेशा ये प्रॉब्लम में रहोगे जो लिव विद इन योर मीन्स की बात मैं कर रहा है। जैसे आप 20% से कम सेविंग आओगे, आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगा, हमेशा चिंता में आएगा, एंड फाइनेंशियल चिंता इतना बड़ी होता है उस टाइम में, ये योगा पीसफुल चीज वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो आपको लगता है कि एक तारीख को बैंक फोन करेगा नहीं तो मेरा गाड़ी ले जाएगा। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स वी फेस इन डे टू डे लाइफ। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस। एंड थर्ड एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अब मेरे पास कितना टाइम है पता नहीं दीदी, है ना। देखो प्रोफेसर जो लोग हैं ना, उनको माइक दे दो वो छोड़ते नहीं है, और सोल्जर जो है उसको राइफल दे दो वो छोड़ते नहीं है, एंड मैंने दोनों है, सोल्जर से स्टार्ट किया आज प्रोफेसर बन गया, तो मेरे पास आज माइक है, फॉर्चुनेटली बंदूक नहीं है। सो एंड आप थोड़ा ताली लगाओगे तो मैं और ज्यादा बोलने वाला। ऑल्दो प्रोफेसरशिप मैं थोड़ा छोड़ दिया, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, बट आई स्टार्टेड माय करियर लाइक दिस। तो थर्ड थिंग आई कैन टेल इज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। इवन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिसकी यू नो इज नोन फॉर इज यू नो वाइल्ड हेयर, उसकी जो ब्रेन था बोलते कि माउंट आबू से भी ज्यादा बड़ा था, यू नो। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो टोल्ड दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स यू सेव मनी एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अर्न मोर मनी, एंड इफ यू कीप इट मोर इट विल अर्न मोर एंड मोर मनी। सो दैट यू शुड थिंक। सो आपका जो पेशेंस है ना, दैट हैज टू बी। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। The example is, suppose you keep only 1,000 rupees in a month, but if you keep 1,000 rupees in a month, आपका 5 साल में 60,000 रुपया आपका रहेगा, just like that. But if you take the 12% interest as a normal interest, if I talk about, then after 5 years, the 60,000 will become करीब 85,000 to 87,000. I can say 1.5 times. But same money continuously you make habit, the 1,000, 1,000, 1,000, if you keep 10 years, so by the 10 years, aap karib 1,20,000 rakhoge, but that money with a 12% interest in the compounding, 1,20,000 will become 2,40,000 या 50,000, मतलब डेढ़ गुना था 5 साल में, ये हो गया दुगना। The same अगर आप 20 साल रखोगे, 1,000, 1,000, 1,000, तो 2,40,000 रुपये आप जमा करोगे, but that money in 20 years it will be 4 times. मतलब 2,40,000 बिकम 8 लाख समथिंग हो जाएगा 4 टाइम्स. बट आप अगर 30 साल रखोगे 1,000 30 साल मतलब करीब 3 लाख 30 साल इज 36 3,60,000 रखोगे बाय 30 इयर्स योर मनी विल बिकम 35 लाख अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स व्हाट यू इन्वेस्ट. दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग. सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप ये सबको मालूम है. मैं खाली रिमाइंड कर रहा हूं कि ये करने से ये एक होगा. आप जानते हो राकेश झुनझुनवाला जिसको बोलते हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, राइट. ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इवन बाय बोरोइंग मनी. ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इवन बोरोइंग मनी जब करीब जब टाइटन का शेयर वो पहले खरीदा था, क्योंकि उसका लाइफ स्टोरी आप सबको मालूम है. विथ 23 रुपीज और समथिंग लाइक दैट, 23 रुपीज ऑफ 5,000 शेयर खरीदा एंड थोड़ी साल में इट बिकम 123 रुपीज. देन दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंस ही स्टार्टेड. प्रोबली इट इज 1985 समथिंग ही बॉट दोज शेयर्स एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड री इन्वेस्टिंग दैट मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इन लग्जरी कार्स और हाउस और समथिंग दैट. सो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही बिकेम वन ऑफ द मल्टी बिलियनर ऑफ द कंट्री बिफोर ही रिसेंटली डाइड. सही है, कितना दूर सही है, कितना दूर somebody can invest like this, I do not know. But definitely for him, the power of compounding helped. So you should understand power of compounding. It means start investing even in small, but investing in a long term. The fourth thing I can say, always try to invest in assets, not liabilities. Whenever you invest money, whether you save money, always try to invest the money in assets, not liabilities. It means, suppose मैं आपको गाड़ी की बात करता हूं. गाड़ी is an investment, assets are liabilities. Liabilities. ना क्यों लाइबिलिटी से? फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी जैसे शोरूम से बाहर निकलता है उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है. जैसे शोरूम से बाहर आया उसकी वैल्यू कम हो गया. अगर आप गाड़ी एक 50 लाख लेके खरीदो, 10% डेप्रिसिएशन भी माने, मैं 5 साल के अंदर आप देखोगे उसकी करीब 50% डेप्रिसिएशन हो जाता है. मीन्स 50 लाख का गाड़ी जो वैल्यू है वो 25 लाख हो जाता है. प्लस आप अगर, ये तो एसेंशियल चीज है बट आई एम जस्ट टेलिंग, व्हेनेवर देयर इज एन ऑप्शन. गाड़ी तो सबके पास होना आजकल एसेंशियल में आ गया, इसलिए एक रिक्वायरमेंट है. बट अगर ऑप्शन है, ऐसे सब चीज देखो जो एक, अगर आपके पास चॉइस है तो आपको क्या करना चाहिए. सो गाड़ी 25 लाख हो गया, प्लस आपको अगर मेंटेनेंस, पेट्रोल और ड्राइविंग इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली, अगर आप 3 लाख करीब स्पेंड करते हो तो 5 साल में वो भी करीब 15 लाख खर्चा. सो 5 साल के अंदर आपका जो एक्सपेंडिचर है 25 लाख फ्रॉम डेप्रिसिएशन एंड 15 लाख इज योर मेंटेनेंस एंड द ड्राइविंग कॉस्ट. सो 40 लाख उसकी खर्चा हो जाता है. सिमिलरली अगर 50 लाख में इफ यू बाय ए हाउस, इवन यू कैन गिवन रेंट, तो आपका एप्रिसिएशन अगर सेम 6-8% पकड़ो तो 50 लाख वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स इट विल बिकम 65 लाख एंड द रेंट कॉस्ट अगर आप 20,000 भी देखो तो 2.5 में ये करीब 7.5-10 लाख की आपको इनकम है, विच एक्यूमुलेटेड विल बी अनदर 25 लाख योर इनकम. सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि आपको, मतलब खरीदना कोई गलत नहीं है, बट खरीदना तो एसेट्स में खरीदो विच विल इधर एप्रिशिएट द वैल्यू रेदर देन थिंकिंग कि पड़ोसी हमको वाह वाह बोलेगा करके ए गाड़ी या मोबाइल या फैंसी द क्लोथ्स या सम फैंसी गैजेट्स लेके आओ, जिसके बिना आप नहीं चल सकते वो एक अलग बात है, बट जिसके बिना अगर चल सकते हो तो कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। डन, ओके, चलो मुझे बोल दे कि अभी आप बोल नहीं सकते, तो मैं फाइनली एक चीज बोलना चाहता हूं, व्हाट एवर यू डू स्टे इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म। आप इन्वेस्ट करो, डोंट गेट एक्साइटेड। जैसे बस में जाते एक बार कहीं पाथोल से आ गया तो ऐसे नहीं कि आप जंप कर लोगे, राइट? इसको जाने मतलब अपना डेस्टिनेशन तक जाना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट द हैबिट फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म। इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म, इट विल गिव यू ए सिक्योर्ड फ्यूचर। आई एम श्योर फाइनेंशियल वेलबींग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ये सब जो स्टे इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म, स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, ये आपके बच्चे को भी बताइए कि जो भी आप बच्चे आपको कोई डिमांड करते हैं तो उनको बोलिए कि ये प्रैक्टिस आप शुरू करो कि यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। डोंट गिव देम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड उनको बोलिए कि इसको प्रैक्टिस बचपन से करिए कि सेविंग कैसे करना, दिस 50-30-20 रूल को कैसे करना, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग कैसे करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। लेट मी टेल यू, यहाँ पे सीखने को बहुत मिला है। हम लोग तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ऑल दो एजुकेशन हम चलाते हैं, इट इज बाय एंड लार्ज इट इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आजकल जो है, बट हम एक बिजनेस कैसे चलाते हैं, बट यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लाइफ को कैसे चलाते सिखाते, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। हम लोग स्टूडेंट को भी जो एजुकेशन देते हैं उसमें मेन मोटो रहता है कि अच्छा ये पढ़ने के बाद आप जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे लगा करोगे। सक्सेसफुल मतलब उसको बोलते हैं कि आप कैसे ज्यादा कमा सकते हैं दूसरे से। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड विच वी आर नाउ लीडिंग और विच वी आर वर्किंग विथ, बट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दे टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन मर्ज विथ द सुपर पावर, विच इज ए रियली ए नोबल थॉट, नोबल कॉज। ये सबको होना चाहिए। हम तो बताते हैं कि आप खाली डे टू डे जिंदगी कैसे करोगे, ये लोग बताते हैं कि जिंदगी ही कैसे जीना है। सो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड होप दे विल कॉल मी अगेन। आई डोंट नो। थैंक यू।
जोरदार तालियां डॉक्टर सुरेश चंद्र पैधी जी के लिए जिन्होंने हमें फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दिया। अच्छा, गाय दूध देती है, यस और नो? यस, राइट? यस और नो? ओके, गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। डर के आगे क्या है? जीत। डर के आगे दर्द है। जब हम दर्द को ओवरकम करते हैं तब हम जीत पाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने हैबिट्स को बनाना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल चीजों को हमें अच्छी तरह से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, वो हैबिट्स हमें खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो अभी हम ब्रेक की ओर जाएंगे। उसके पहले जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी तो हम सभी चेक ही डालते हैं ना बैंक में, तो चेक वो एक बैंक में डालना हुआ और अपने अंदर चेक करना कि हमारे सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल वेलबींग कैसी है, तो वो भी चेक करेंगे और अपने आप को भी देखेंगे। तो हम सभी को ब्रेक पसंद है, राइट? लेकिन ब्रेक के साथ अगर एक्सीडेंट कब होता है? जब गाड़ी को ब्रेक नहीं लगता है। इसी प्रकार से जब हम बहुत ओवर थिंक करते हैं और जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तब हम ब्रेक नहीं लगा पाते। और मेडिटेशन हमें पावर देती है कि हम अपने थॉट्स के ऊपर कैसे ब्रेक लगाएं, कैसे उसे डायरेक्शन दें। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड सिग्नल, राइट, वो स्टॉप कराता है, येलो स्लो डाउन एंड ग्रीन गो। अगर हम पीछे आते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। वी कैन ओनली गो फॉरवर्ड। सो मेडिटेशन गिव्स अस द पावर टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। एंड इसी के साथ हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे मेडिटेशन, एंड देन विल वाइंड अप दिस सेशन। सिट बैक स्ट्रेट एवरीवन, बैक स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें और देखें अपने विचारों को, आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, और महसूस करें जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं वैसे आपके विचार शांत होते जा रहे हैं, आपका मन शांत होते जा रहा है। और अपने आप को देखें एक शांति का सितारा 2 भ्रुकुटी के बीच में, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसा एक सुंदर सा सितारा चमक रहा है। देखें अपने घर वालों को, जहां पर आपका जन्म हुआ है, और महसूस करें कि मेरे सारे घर वाले बहुत तंदुरुस्त हैं। माय फिजिकल फिटनेस इज बेस्ट, इज परफेक्ट। मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ भी परफेक्ट है। सारे बहुत खुश है। मेरी सोशल लाइफ, मेरे सारे रिश्ते नाते बहुत प्यारे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं। और मेरी फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा घर सुख शांति और समृद्धि से भरपूर है। और महसूस करें आपका विश्व ही पूरा परिवार है, पूरा विश्व ही सुख शांति और समृद्धि से भरपूर है, परमात्मा की छत्र छाया के अंदर है। हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार, लंबा श्वास ले। Thank you.